लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हमने क्रिस्तुस विवित, यीशु ख्रिस्त जीवित है युवाओं के संबंध में संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस द्वारा युवाओं और पूरी कलिसिया के नाम प्रेरितिक उद्बोधन पर एक चर्चा शुरू की है। हमने पिछले प्रसारण में इस बात का जिक्र किया कि कैसे नए विधान में ईश्वर युवाओं के संग रहते और उन्हें अपने कार्यों को पूरा करने हेतु अपने सामर्थ्य से भर देते हैं। आज हम इसके दूसरे भाग की चर्चा करते हुए अध्याय दो में प्रवेश करेंगे, जो हमें यीशु के युवा काल की चर्चा करता है। संत मत्ती के सुसमाचार में हम एक युवा व्यक्ति को पाते हैं जो यीशु के पास आता है और उनसे यह पूछता है कि उसे और क्या करने की जरूरत है। इस भांति वह हमारे लिए युवा काल के उन मनोभावों को प्रदर्शित करता है जहां वे अपने में एक नए क्षितिज को पाने की आशा करते और अपने में महान चुनौतियों का सामना करने को सदैव तैयार रहते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि यद्यपि उसका जोश अपने में युवा नहीं है, क्योंकि वह अपने में धन संपत्ति और ऐशो आराम की चीजों में आसक्त है, वह अपनी ओर से कुछ और करने की सोचता है। लेकिन जब यीशु उसे अपनी उदारता में धन संपत्ति को बांटने की बात कहते, तो वह इस बात का अनुभव करता है कि वह उनका परित्याग नहीं कर सकता है। अतः अंत में वह युवक यीशु की बातों को सुनकर वहां से उदास चला जाता है, वह अपने युवा काल को खो देता है। सुसमाचार हमें युवा नारियों के बारे में बतलाता है जो प्रतीक्षा में तैयारी कर रही होती हैं, जहां कुछ अपने को विचलित और निंद्रा की स्थिति में पाती हैं। हम अपने युवा काल को वास्तव में विचलित होकर अपने जीवन के दायरे को छोटा करते हुए आधी निंद्रा, अपने व्यक्तिगत संबंधों को अर्थपूर्ण बनाए बिना या अपने जीवन में किसी चीज को गहराई से अनुभव किए बिना ही व्यतीत कर सकते हैं। इस भांति हम अपने जीवन को छिछला और भविष्य को निराधार बनाते हैं। वहीं हम अपने युवा काल में सुंदर और बड़ी चीजों के प्रति खुला रहते हुए अपने भविष्य और जीवन को धनी बना सकते हैं। संत पापा आगे कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन के आंतरिक सजीवता, सपनों, उत्साह और अपनी उदारता को खो देते, तो यीशु हमारे सामने उसी तरह खड़े होते हैं जैसे कि वे मृत जवान बेटे विधवा माता के सामने खड़े हुए और अपने पुनरुत्थान के सामर्थ्य से हमें कहते हैं, हे युवा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। ईश्वर का वचन कई रूपों में हम सबों का आह्वान करता है, जिसकी चर्चा हमारे लिए क्रिस्तुस विवित के आने वाले अध्यायों में की गई है। यीशु ख्रिस्त युवाओं के बीच युवा है, जिससे वे युवाओं के लिए एक उदाहरण बन सकें और उन्हें ईश्वर के पास ले चलें। इसी कारण सिनड में यह कहा गया कि युवा काल अपने में एक असल और उत्तेजित करने वाला जीवन का समय है। इसे यीशु ख्रिस्त ने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया और इसे पवित्र किया। यीशु ख्रिस्त ने क्रूस पर अपने प्राण निछावर किए जब उनकी आयु 30 साल से थोड़ी अधिक थी। यहाँ हम इस बात का अनुभव करते हैं कि यीशु ख्रिस्त अपने में एक युवा व्यक्ति थे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति यदि आज के परिवेश में कहें तो उस समय दी जब वे युवा वयस्क थे। उन्होंने अपने प्रेरितिक कार्यों की शुरुआत अपने युवा काल की चरम परिस्थिति में की और इस भांति एक ज्योति का उदय हुआ जो अपने में अति प्रदीप्त होकर अपने जीवन को बलिदान कर दिया। उनके जीवन का अंत यूं ही नहीं हुआ बल्कि उनका पूरा जीवन हर क्षण अपने में एक कीमती तैयारी का समय था। यीशु के जीवन का हर समय अपने में एक रहस्य था। वास्तव में यीशु ख्रिस्त का संपूर्ण जीवन अपने में मुक्ति का एक रहस्य है। सुसमाचार हमें यीशु के बाल्यावस्था का वृतांत प्रस्तुत नहीं करता है लेकिन यह उनके किशोरावस्था और युवा काल की कई घटनाओं का जिक्र करता है। संत मत्ती अपने को यीशु के जीवन काल की दो परिस्थितियों पर व्यवस्थित करते हैं, उनके परिवार का निर्वासन के बाद नाजरेत वापस लौटना और यर्दन नदी में यीशु का बपतिस्मा ग्रहण करना, जहां से वे अपने सामान्य जीवन काल की शुरुआत करते हैं। एक छोटे बालक के रूप में यीशु को हम मिस्र देश में शरणार्थी के रूप में पाते हैं। वे नाजरेत में पलते और बढ़ते हैं। एक वयस्क युवा के रूप में हमारी नजर यीशु की ओर तब जाती है जब वे अन्य दूसरे सदस्यों की तरह यर्दन नदी के किनारे भीड़ में बपतिस्मा ग्रहण करने हेतु कतार में खड़े हो जाते हैं। श्रोताओ, यीशु का बपतिस्मा हमारे बपतिस्मा की तरह नहीं था जो हमारे लिए कृपा का स्रोत बनता है, बल्कि यह पिता के महान कार्य की शुरुआत के पूर्व उनका अभिषेक था। सुसमाचार हमारे लिए यह बतलाता है कि पिता उनके ऊपर आनंदित और हर्षित होते हैं। तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। यीशु ख्रिस्त तुरंत अपने को पवित्र आत्मा से सराबोर पाते हैं और आत्मा उन्हें मरुभूमि की ओर ले चलता है जहां वे अपने को ईश वचन के प्रचार और चमत्कारों को करने, लोगों को बीमारियों से स्वतंत्र करने हेतु अपने को तैयार करते हैं। हर युवा जो अपने में इस बात का एहसास करता है कि ईश्वर उसे दुनिया में अपने प्रेरितिक कार्यों को करने हेतु बुलाते हैं तो उसे चाहिए कि वह पिता के इन वचनों को अपने हृदय की गहराई में सुने, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। इन दो संदर्भों के मध्य हम एक किशोर यीशु को पाते जो मंदिर में खोए और पाए जाने के बाद अपने माता पिता के साथ नाजरेत लौट कर आते हैं। यहाँ हम इस बात को पाते हैं कि वे अपने माता पिता के अधीन रहे, उन्होंने अपने परिवार का परित्याग नहीं किया। संत लूकस इसके बाद इस बात की चर्चा करते हैं कि यीशु ख्रिस्त अपने ज्ञान और विवेक में बढ़ते गए, वे ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। एक शब्द में हम कह सकते हैं कि यह उनके लिए तैयारी का एक समय था जहां वे अपने पिता और दूसरों के संग एक संबंध में बढ़ते गए। संत पापा जॉन पॉलुस द्वितीय इस बात की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यीशु ख्रिस्त केवल शारीरिक रूप में ही विकास नहीं किया वरन उनका आध्यात्मिक विकास होता गया, क्योंकि यीशु ख्रिस्त में कृपाओं का अनुपात उनकी आयु के अनुरूप हुआ। कृपाओं की परिपूर्णता उनमें हमेशा से थी लेकिन वह पूर्णता उम्र के साथ बढ़ती गई। सुसमाचार के अनुसार जैसा कि यह हमें बतलाता है, हम कह सकते हैं कि यीशु अपने युवा काल के दौरान परिशिक्षण के दौर से होकर गुजरे जिससे वे अपने पिता की योजना के अनुरूप अपने कामों को पूरा कर सकें। उनकी किशोरावस्था और युवा काल उन्हें अपने प्रेरितिक कार्यों को उत्कृष्ट रूप में पूरा करने हेतु पुष्ट किया।
मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरे दिल में
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। मानव बंधुत्व पर दस्तावेज को बढ़ावा देने हेतु गठित उच्च समिति के सदस्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाने की प्रथम बरसी मना रहे हैं। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों को संबोधित किया। संत पापा फ्रांसिस एवं अलहजर के ग्रैंड इमाम द्वारा मानव बंधुत्व पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर के एक साल पूरा होने पर दस्तावेज को लागू करने के लिए गठित उच्च समिति के सदस्य अबू धाबी में एकत्रित हैं। अल अजहर के ग्रैंड इमाम के पूर्व सलाहकार एवं उच्च समिति के सचिव न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल सलाम ने प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर इस बात को रेखांकित किया कि मानव बंधुत्व पर दस्तावेज पूरे विश्व के मनुष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उच्च समिति अपने आप में आत्मनिर्भर है, तथापि समिति के विकास को संत पापा फ्रांसिस ग्रैंड इमाम एवं अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मानव बंधुत्व पर उपलब्धि हासिल करने के लिए निर्णयकर्ताओं एवं धर्म गुरुओं तथा साथ ही साथ मीडिया के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने दस्तावेज को किस तरह लागू किया जाए इसके बारे बतलाते हुए संत पापा फ्रांसिस का उदाहरण दिया, जिन्होंने हाल ही में कई शरणार्थी परिवारों का स्वागत किया और इसके लिए धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। मॉन्सिनियर यूएनिस गाइड ने कहा कि मानव बंधुत्व के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं की विशेष भूमिका है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज का आधार ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि सभी विश्वासी अपना उद्गम ईश्वर में पाते हैं। ईश्वर ने ही सभी मनुष्यों को एक परिवार में एकत्रित किया है, अतः सभी धर्मों के सदस्य एक दूसरे के भाई बहन हैं और विशेषकर युवा ही हैं जो दस्तावेज में निहित विचारों को साकार रूप देने में पूरी तरह प्रवृत्त हो सकते हैं। अल अजहर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन एल महरसवे ने याद किया कि किस तरह दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले यूरोप और अफ्रीका से आए तथा एशिया में हस्ताक्षर किया गया। उन्होंने कहा, अब विश्व एक छोटा गांव है। मानव बंधुत्व पर दस्तावेज समयानुकूल है, क्योंकि यह एक विश्लेषण प्रदान करता है कि दुनिया शांतिपूर्ण अस्तित्व में एक साथ कैसे रह सकती है। उन्होंने बतलाया कि अल अजहर विश्वविद्यालय ने मानव बंधुत्व पर दस्तावेज की शिक्षा देना आरंभ कर दिया है और इसमें निहित मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहल भी करेगा। यूनेस्को के पूर्व महानिदेशक इरीना बोकोवा
उच्च समिति में सबसे बाद में शामिल हुए हैं। वे भी एक साल पहले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय उपस्थित थे। उन्होंने कहा, दस्तावेज को हमारे समय के मूलभूत नैतिक दस्तावेज के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज से युवा उत्तर पा सकते हैं और यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के चौथे बिंदु के अनुरूप है, जो शिक्षा को लक्षित करता है। वॉशिंगटन इब्रानी धम समाज के वरिष्ठ रब्बी ब्रूचेलूत सिंह ने कहा कि दस्तावेज में सबसे कठिन चीज है जिसकी जरूरत दुनिया को है। उन्होंने इस बात को जोर दिया कि दस्तावेज विश्व के सभी धर्मों के साथ सामंजस्यपूर्ण है। हम एक परिवार के हैं और एक ही घर में रहते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के सम्मान एवं प्रतिष्ठा का ख्याल रखे और एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हो। यह प्रत्येक व्यक्ति को मैं से हम की ओर बढ़ने हेतु प्रेरित करता है। दुनिया में 70 मिलियन शरणार्थियों के साथ यह याद रखना अच्छा है कि अब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दस्तावेज में अप्रवासियों की वास्तविकता का सामना, नागरिकता को अलग तरह से समझने एवं जो लोग विस्थापित हैं उन्हें शिक्षित करने के रूप में करना चाहिए। संत पापा फ्रांसिस ने इटली की राजधानी रोम शहर को ईश्वरीय अनुकंपा का शहर घोषित किए जाने की 150वीं वर्षगांठ मनाई तथा शहर के निवासियों को निमंत्रण दिया कि वे इस अनंत शहर को एकात्मकता एवं शांति का स्थान बनाएं। जुसेप्पे गरिबाल्दी के नेतृत्व में इटली सैनिकों के हाथों नवगठित इटली साम्राज्य ने 3 फरवरी 1871 को रोम को अपनी राजधानी घोषित किया था। इससे रोम और पोप अधिकृत राज्यों पर पोप का नियंत्रण समाप्त हो गया था। संत पापा ने रोम शहर को इटली की राजधानी घोषित किए जाने को एक ईश्वरीय अनुकंपा की घटना कहा, जिसके कारण विवाद एवं समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं, किंतु इसने रोम, इटली और पूरी कलीसिया में परिवर्तन लाया और एक इतिहास की शुरुआत हुई। संत पापा ने यह संदेश रोम की राजधानी घोषित किए जाने की 150वीं वर्षगांठ समारोह के उद्घाटन पर दिया, जिसको वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने प्रस्तुत किया। समारोह का उद्घाटन सोमवार को ओपेरा थिएटर में किया गया, जहां इटली के राष्ट्रपति सेर्जो मत्तेरेल्ला एवं अन्य सम्मानित अधिकारी उपस्थित थे। अपने संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने संत पापा पॉल षष्ठम के लेख का हवाला देते हुए कहा कि यह एक तबाही जैसा लग रहा था और परमधम पीठ द्वारा इस क्षेत्र पर प्रभुत्व के लिए ऐसा था भी, किंतु यह ईश्वरीय अनुकंपा था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इसने चीजों को अलग, लगभग नाटकीय रूप में एक उज्जवल दुनिया बनाने की घटना को समाप्त कर दिया था। संत पापा ने कहा कि 150 में रोम में काफी परिवर्तन एवं विकास हुए हैं तथा कलीसिया ने रोम वासियों के आनंद और परीक्षणों को साझा किया है। राजा दाऊद का अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक, जिसने उनके विरुद्ध युद्ध किया था, पिता ईश्वर का हमारे प्रति प्रेम की भविष्यवाणी है, वह प्रेम जो यीशु की क्रूस मृत्यु तक गहरा है। उक्त बात संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार को वैटिकन के प्रेरितिक आवास संत माता में क्रिस्त्याग अर्पित करते हुए प्रवचन में कही। संत पापा ने कहा, मेरा पुत्र अब्सलोम, यदि तुम्हारे स्थान पर मैं मरा होता। यह कहते हुए दाऊद ने अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक प्रकट किया। संत पापा ने कहा कि दाऊद का शोक मनाना ऐतिहासिक सच्चाई है, बल्कि यह एक भविष्यवाणी भी है। यह ईश्वर के हृदय को दर्शाता है, जो उनसे दूर चले गए लोगों के वापस आने पर खुला रहता है। प्रभु पिता हैं और अपने पितृत्व कभी नहीं खोते। वे कहते हैं, मेरे पुत्र और मेरी पुत्री। संत पापा ने विश्वासियों को निमंत्रण दिया कि प्रलोभन की घड़ी में पाप करते हुए और जब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं, तब हम उस आवाज को सुने, मेरे बेटे, मेरी बेटियां क्यों। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।